आंखें ठीक हो गई घोड़े की। अब आंखें ठीक हो गई तो राजा बहुत खुश हुआ और उसको पुरस्कृत कर दिया। बोले कि शाबाश बेटा, तू एकदम होनहार बालक निकला। बोले पिता ने जो काम किया वो काम तूने भी कर लिया उनकी अनुपस्थिति में, और बहुत बधाइयाँ दी और सम्मान किया और पुरस्कार दिया। अब इसके बाद जब वो वैद्य लौट करके आए, बोले कि कुछ हुआ था क्या यहाँ? मैंने सुना कि बहुत चर्चा है, मतलब वैद्य जी के घर पे कुछ बढ़िया काम हो गया। क्या काम किया तूने? बोले ऐसा ऐसा हुआ था कि राजा के यहाँ जो घोड़े थे उसमें से एक घोड़े को दिख नहीं रहा था, तो फिर मैंने दवाई लगा दी। अरे कौन सी दवाई लगा दी? बोले तो फिर बोले कि ये चार दवाइयाँ थी, इन मेरे को मालूम नहीं था कि कौन सी आँख वाली है, चारों मिक्स करके लगा दी। बोले तो फिर वैद्य जी बोलते कि अच्छा हुआ, बोले कि ये चार उठाई, अगर ये पाँचवीं उठा लेता तो फिर आँख फूट जाती। बोले वो किस्मत की बात थी। बोले कि ये चार दवाइयों में से ये एक दवाई जो थी वो अकेली पर्याप्त थी, लेकिन ठीक है तुमने चारों लगा दी, आँख तो ठीक होगी। बोले तो पता नहीं कौन सी दवा काम कर जाए, कौन सी बार आप 24 भगवान का नाम ले रहे हैं, चार बार नाम ले रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं, चार में से जब भी अपनी भक्ति भाव भावना जागृत हो गई तो वो सार्थक हो गया ना। तो इसी प्रकार मुसीबतों में भी अगर भगवान के पास कोई जाता है, क्षेत्रों पर जाता है, तो उसको ये याद रखना चाहिए कि देखो मुसीबत में मैं गया था भगवान के पास, उनकी याद आई थी मुझे, और मुसीबत दूर होने के बाद मैं भूल ना जाऊं। क्या मुसीबत में गया जरूर था भगवान के पास, अब मुसीबत टल गई, अब आगे का क्या? फिर मुसीबत आएगी तब देखेंगे। ये बनियागिरी है, ये जैनी का लक्षण नहीं है। जैनी वो होता है जो एक बार जिसने अपना, जिसके निमित्त से हित हुआ है, अब संकट टलने के बाद भी वो वैसी गद्दारी या फिर वैसा बर्ताव नहीं करेगा। कृतज्ञता, ये तो सामान्य मनुष्य की बात, जैनी की तो बात छोड़ दो आप, जैनी के तो बहुत नियम कायदे कानून है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य होने के नाते भी जहां से अपना हित हुआ है उसको कैसे भूला जा सकता है? हमेशा भगवान की भक्ति में। अब कबीरदास जी ने तो एक दोहा ही लिख दिया था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोए, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो अब दुख टलने के बाद सुख आ गया, अब चालू कर दो सुमिरन, दुख में ही चालू कर दिया था वैसे, उसको स्टॉप मत करो, अभी चलने चलने दो दवाई, फिर आगे उज्जवल भविष्य होता है। इसलिए भगवान की विनय पर कभी भी लापरवाही नहीं करना, विनय बराबर होनी चाहिए। कैसे उठाना भगवान को, कैसे विराजमान करना, और फिर अभिषेक के समय छत्र भी चलायमान नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी बातें, नियम कई बार हमने आप लोगों को बताया भी है, तो इस पर आप कम से कम जो व्यक्तिगत स्तर पर आप जितना कर सकते उतना तो कर ही लो, और रोज एक माला फेर लो इसके लिए। ठीक है, आप किसी को ऑर्डर करके या फिर किसी को मीटिंग में बैठाल कर अपनी बात नहीं मनवा सकते, कोई बात नहीं, यहां हार मानने की बात नहीं है, रास्ते बहुत सारे हैं। आप बैठ करके एक माला फेरो भगवान के पास कि यहां की विनय और सारी व्यवस्था अच्छी हो जाए, बिल्कुल जो जितनी कमियां हैं यहां पर वो दूर हो जाए, इसके लिए माला फेरो ना। और हम बता रहे हैं ना, है कमियां, अब ज्यादा उसका क्या विस्तार करना, तो वो कमियां दूर हो जाए बस इतनी भावना से आप माला फेर लो एक, देखो कितने दिन में काम होता है। दशहरा भी नहीं आएगा, दिवाली तो बहुत दूर की बात है, अगर आप सही भावना से इतना कर लो तो फिर सब ठीक ठाक हो जाता है। हमने तो कहा था एक बार कि नमोकार मंत्र के 1,25,000 जाप तो बहुत दूर, एक माला में भी वो क्षमता है, एक माला फेर कर, जैन हो या अजैन हो उससे कोई मतलब नहीं है, एक माला फेरने पर भी नमोकार मंत्र की माला में वो क्षमता है। अर्थ समझना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उस कुत्ते को अर्थ नहीं आता था जिसको देवपद प्राप्त हो गया नमोकार सुन करके, उसको पता था अरिहंत कौन है। जीवंदर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, उसको कुछ भी मालूम था क्या? उसके पास तो अंगूठा भी नहीं था, इसलिए उसको अपन अंगूठा छाप भी नहीं कह सकते कुत्ते को, लेकिन नमोकार मंत्र अपने आप में मंगल है। धवला की पहली पुस्तक में ये जानकारी दी है कि डमुकार मंत्र का अर्थ समझकर पढ़ने से ही अच्छा भला होता हो ऐसा कुछ नहीं है। अरहंत मात्र इतना शब्द भी मंगल है अपने आप में। अब मुसलमान बाबा लोग, कई बाबा लोग नमोकार का इस्तेमाल करते हैं। अभी महाराष्ट्र से हम जब इधर आ रहे थे तो फिर एक व्यक्ति के यहाँ पर ताबीज बांधा था उन्होंने, और उस ताबीज में कुछ उर्दू भाषा में कुछ था। उसको खोलकर किसी उर्दू भाषी से पढ़वाए कि ये क्या लिखा है। उसने पढ़ करके सुना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोए सबसाम। उसकी तकलीफ ठीक हो गई। अब सोचो आप, आपको लगता है कि ये घर की चीज है, हम तो बचपन से जानते हैं, इसमें क्या है, ऐसे ही ना। अब वो तो फिर संकोच भी होता है कि भाई क्या बताएं, है तो प्रसिद्धि तो बड़े महामंत्र के रूप में है, इसलिए हम कैसे बोलें कि हमें फायदा नहीं हो रहा है। बोलने में भी संकोच होता है, और नमोकार मंत्र से फायदा नहीं होता कई लोगों की अश्रद्धा, और फिर वो क्रॉस करते हैं ना उसको, शॉर्ट सर्किट करते हैं नमोकार की जो एनर्जी है उसको आप शॉर्ट सर्किट करते हैं, उस शक्ति को आप नष्ट करते हैं। कैसे नष्ट करते हैं? अपने अविश्वास के कारण। और वो उस मुसलमान को विश्वास है तो फिर वो काम करता है मंत्र। अब कोई कहे कि नहीं वो विश्वास से ही सब कुछ होता है, तो ठीक है, विश्वास से अगर सब कुछ होता है तो आप विश्वास करके बैठो ना कि मैं ठीक हूं, फिर नमोकार मंत्र की भी जरूरत नहीं है। तो नहीं, इसका आप देखिएगा, और फिर देखो वातावरण अगर मंगलमय हो तो धर्म ध्यान करने में कितना आनंद आता है। आप उसमें किसका दोष है, कौन क्या कर रहा है, ये सब बातें छोड़ दो। आपको सिर्फ क्या करना है, एकदम सीधा साधा पुरुषार्थ है आपको, कोई कषाय करने की जरूरत नहीं है आपको कि फलाना ऐसा है ढिकाना ऐसा है, इससे कोई मतलब नहीं है कौन कैसा है। आपको क्या करना है, बस आप अपना काम करो, अपने पुरुषार्थ से अपना जीवन तो उज्जवल हो ही सकता है, बाकी कोई कुछ भी करता रहे, दुनिया को कोई नहीं सुधार सकता। ज्ञान सागर महाराज जी ने लिखा है कि सारे रास्ते पर दरी बिछाने के बदले अपने पैरों में जूते पहन लो। सारे रास्ते पर बहुत कांटे कंकड़ बहुत है ना रास्ते में, क्या करोगे, दरी बिछाओगे? इतनी बड़ी दरी बनी है किसी फैक्ट्री में, कितने किलोमीटर की दरी बिछाओगे आप बताओ, उतने पैसे कहां से लाओगे? तो सारे रास्ते पर दरी बिछाने के बजाय अपने पैरों में सुरक्षा कर लो, बस कषाय बिल्कुल छोड़ देना, कुछ करना ही नहीं आपको, सिर्फ इतनी व्यवस्था बस ठीक हो जाती है ना, तो अपने आप सारा वातावरण बदल जाता है और कुछ नहीं है। बहुत सीधा सरल गणित है उसमें, बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब यह है कि भगवान की जब तक अभिनय होगी तब तक कोई ना कोई अशांति का कारण पैदा होता रहेगा। वो कारण कौन पैदा कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो आप एक तरफ रख दो, सीधा मूल को पकड़ो आप, और बस इसकी इस भावना से आप पुरुषार्थ प्रारंभ कर दो, क्या नहीं हो सकता। जब बिगड़ती हुई संलेखना सुधर सकती है तो फिर अभी तो अपने पास जीवन है, अभी तो अपने पास क्षमता है, अभी अपने पास पुरुषार्थ है, अभी अपने पास इंद्रियां है। स्वाध्याय का भी एक 15 मिनट का कम से कम नियम रखना चाहिए, नहाने में 20 मिनट लग जाते हैं, कभी आधा घंटा लग जाता है, 15 मिनट स्वाध्याय करने में क्या परेशानी है, 15 मिनट स्वाध्याय कर लो। जरूरी नहीं है कि किसी के भरोसे करो, ऐसे कई ग्रंथ है जो आप पढ़ सकते हैं स्वयं, कितनी चीजें मिलती है स्वाध्याय करने पर। जो स्वाध्याय और ध्यान से दूर रहता है उसका मन अशांति की तरफ निश्चित रूप से चला जाता है, इसलिए स्वाध्याय और ध्यान। अब जैसे ध्यान अपन करते थे पहले, वो एक पदस्थ ध्यान का अभ्यास चलता था, फिर मामला एकदम ठंडा है और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हुआ है पहले से, तो वो परिवर्तन आ गया। खैर उसमें हमें कोई अकुलता नहीं, हमारा तो अपना क्रमचारी है, तो कुछ अपने जीवन में साधना होना जरूरी है। सिर्फ सुनना और फिर समझ लेना कि मैंने बहुत धर्म कर लिया, उतना पर्याप्त नहीं है, कुछ साधना भी अपेक्षित है, कषायों को जीतना। अब कषाय आप जितनी बढ़ाएंगे, वो जितना कलुषित था वातावरण, उसमें और ज्यादा कलुषता पैदा हो जाएगी, फिर उसका कोई अंत नहीं है। क्या होगा उसके बाद? वो चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब यहां से ऐसे ठोकर लगी, वो उसके ठोकर, जैसे रैगिंग होती थी ना, ब्रिटिशर्स ने एक परंपरा डाली इंडियन कॉलेजेस में, उनने क्या किया कि जो जूनियर स्टूडेंट्स आते थे उनको परेशान करो बोले, तो उनको परेशान करते थे सीनियर लोग। अब वो क्या करें, वो सीनियर को तो कुछ कर नहीं सकते, तो अगले साल जो जूनियर आएंगे उनको पेलो बोले अच्छे से, रैगिंग लो। ये रैगिंग की पद्धति उन्होंने डाल दी। और फिर वो क्या करते थे, वो अगले साल जो नए आते थे उनकी रैगिंग लेते थे। तो इस प्रकार वो रैगिंग की परंपरा अभी तक चली आ रही है, और उसमें कितने लोग मारे गए, कितने लोग मर गए, कितनी दुर्घटनाएं हुई रैगिंग में। तो फिर कषाय का कोई अंत नहीं है, अपने पास बहुत उज्ज्वल प्रकाश है जिनेंद्र भगवान का, बस उनके सामने एक माला नमोकार महामंत्र की आप करिए। और बहुत ज्यादा मंत्र ढूंढने की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। परमेष्ठी वाचक जो मंत्र हैं ठीक है, अगर किसी मंत्र से अपने को लाभ हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन अपनी मूल बात तो यह है कि अपना जीवन पवित्र होना चाहिए। दर्शन ज्ञान और चारित्र में प्रगति होनी चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अनमोल रत्न है, मनुष्य पर्याय में मिल सकते हैं प्रयास करें तो। अन्य गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है लेकिन संयम नहीं हो सकता। और तिरंज गति में देखो, देश संयम होगा, संयम तो नहीं होगा। देश संयम माने अपूर्ण संयम, पूर्ण संयम मनुष्य जीवन में ही संभव है। तो ऐसा कोई पुरुषार्थ अपने जीवन में करके, और फिर सबसे पहले तो इस वातावरण को आप पवित्र बना सकते हैं। थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको, कोई ज्यादा भारी काम नहीं है। अभी अगर भूकंप आने वाला कोई वो कर दे कुछ कि भाई वो कौन से मोहल्ले में आएगा, जहां नमोकार मंत्र फेरेंगे आप माला तो नहीं आएगा, तो फिर चालू हो जाएंगे सब। अरे जैसा भूकंप से डर लगता है वैसे ही आपको भगवान के अभिनय से डर नहीं लगता? उसका आप करिए उपाय, कुछ ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपको किसी से कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो बोलने वाला काम जो होता है वो सब लंबा चौड़ा होता है। सरकार के खाते में देखो कितनी सारी बातें, कई केसेस ऐसे हैं जो मतलब 20-20 साल से चले आ रहे हैं, कोई उसका हल निकलता है क्या? हल निकलना तो सीधा डायरेक्ट काम करो, बीच में किसी को मत लाओ, सीधे भगवान के सामने बैठो, आराधना करो, देखो सब काम कैसे होते हैं। इतना सा उपदेश था आज का। और फिर संलेखना की जो घटना शुरू में सुनाई थी, उससे फिर अपने जीवन में भी ये प्रेरणा मिलती है कि नहीं, कभी ऐसी स्थिति आती है कर्म के उदय में, लेकिन उस समय संभालने की जरूरत है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 हिस्से होते हैं, 8 अंग होते हैं सम्यक्त्व के। इनमें 4 तो आत्माश्रित होते हैं, 4 पराश्रित होते हैं। 4 आत्माश्रित होते हैं, 4 पराश्रित होते हैं। तो फिर दोनों को सापेक्ष करके अपने को चलना है। और अंग अगर ठीक होंगे तो फिर अंगी अर्थात सम्यक दृष्टि ठीक होगा। सम्यक दर्शन ठीक रखो तो फिर सम्यक दृष्टि भी ठीक रहे, सम्यक दर्शन चौपट हो जाए तो फिर सम्यक दृष्टि का क्या हाल होगा? वो भी सम्यक दृष्टि कहां रहेगा? इसलिए सम्यक दर्शन को निर्मल रखने के लिए ये जो आराधना, गृहस्थों के लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कह दिया कि भाई शुभोपयोगस्तु मुख्य है, कषाय सद्भावात। 254वीं गाथा प्रवचन सार की, उसमें आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा कि भाई तुम दान पूजा को छोड़ना मत, स्वाध्याय करो, बहुत अच्छी बात है, कभी न कर पाए तो भी उतना नुकसान नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि स्वाध्याय करो, पर दान और पूजा से पीछे मत हटना। पूजा से भगवान की निकटता प्राप्त होती है और दान से गुरु की निकटता प्राप्त होती है। भगवान और गुरु की संगति रखने से दुर्बुद्धि नहीं बन पाओगे। दुर्बुद्धि कब बनता है मनुष्य? संगति बिगड़ने पर। इसलिए संगति सही बना करके रखना चाहिए।